sulla patria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صلوات الله محمد وعلى محمد آپ سے درخواست کروں گا شہید حسن ابن حسین جنہیں ہم سب شبو بھائی کہتے تھے ان کے اصال ثواب کے لیے اور اسے خاندان کے دیگر مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ایک سلوات عنایت فرما دیجیے صرف گزارش ہے کہ تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا بہت جگہ آگے خالی ہے اس طرف بھی سب خالی ہے میرے پائیں پر تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو اچھا بہتر گفتگو ہو جائے گی ایک سلوات عنایت فرما دیجیے بلند آواز سے ادارے محترم بار اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کوئی گمان میں نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک ایسا سنجھا ہو جاتا ہے یہی کچھ اس خاندان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں خاندانوں کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی بیٹا اس کو بند کر دیں مجھے دیکھتے ہیں پلیز اس کو بند کر دیں مجھے ایک سلامات دیجیے محمد عالم ایسا ہی کچھ سب کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ جو ہے جہاں تک خاندان کا تعلق خاندان کی بات ہو تو میں مطلب کوئی سنی بھی کوئی بات تو کر نہیں رہا کسی سے میں نے کسی سے سنا ہو یا مجھے بتایا گیا ہو تو پھر میں گفتگو کروں میں تو کچھ ذاتی طور پہ جانتا ہوں برسوں سے جانتا ہوں خاندان کو کہ کتنی سالے اولاد کتنے سالے بچے پورا خاندان ایک فرد نہیں اور صرف ایک ہوتا ہے انسان عبادت گزار ہو عابد ہو اپنے لیے عابد جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے ایک عابد نہیں ہوتا اپنے لیے نہیں کرتا ایک عابد سے آگے بڑھ کر ہوتا ہے جسے ہم عالم بھی کہہ سکتے ہیں عالم وہ ٹپیکل اصطلاح ہے جس نے دینی تعلیم حاصل کی اور وہی بس عالم کہہ جاتا ہے عالم عالم وہ جو اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتا ہے عالم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتا ہے کہ مجھے زندگی میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں شعور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی لیے روایات میں یہ فرق بتایا گیا عالم اور عابد یا عالم اور زاہد کا کہ اس کی اس کا سونا اس کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہوتا ہے کیوں افضل ہوتا ہے عالم کا سونا اس عابد کے رات بھر کے جاگنے سے کہ عابد جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی نجات کے لیے کرتا ہے عالم جو کچھ بھی کرتا ہے معاشرے کی نجات کے لیے کرتا ہے انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے تو فرق ہو گیا نا ایک بار انسان اپنی نجات کے لیے کام کر رہا ہے ایک بار انسان معاشرے کی نجات کے لیے انسانیت کی نجات کے لیے انسانوں کی نجات کے لیے اور بغیر تفریح کی خدمت کرے تو وہ اس کا فرق زیادہ ہے اور ایسی ہی یہ میں نے جو دو منٹ میں تعارف کرانا ضروری تھا اور حق یہ ہے شہید کا اس کا سردار میں تعارف کرا دیا جائے کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسی ہی شخصیت تھے حسن ابن حسین کیونکہ ہم سب شبو بھائی کہا کرتے تھے کہ جو اپنی رات میں تو چاہیے آگے زندہ دار بھی مجھے بھی بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ وہ اطلاعات ہیں فرسٹ ہینڈ جو میں جانتا ہوں مجھے کسی نے بتائی نہیں عابد شب زندہ دار شخص جو رات کی تاریخی میں بھی مسجد نکل کے آنے والے چند لوگوں میں سے ایک تھے اعلان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے بہت زیادہ تھے فجر کے وقت زہرین مغربین میں کچھ لوگ مومنین آتے ہیں، انفرد کے افراد چار پانچ افراد میں سے ایک شخص تھا، تو وہ اپنی جگہ اس کا پہلو، عبادت کا پہلو اپنی جگہ مکمل تھا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو تھا وہ بھی سب جانتے ہیں، اور یہ باتیں آتی ہیں مرنے کے بعد سامنے، زندگی میں کچھ لوگ جانتے ہیں نا، مرنے کے بعد جب وہ لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ وہ کچھ کر رہا ہوتا تھا، تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے شہادت کا تاج کیوں پہنایا ہے، یہ ہر ایک کو سعادت تو نہیں نصیب ہوگی نا، یہ تو دیکھیے بے شک غم ہے، دکھ ہے، ہم آج تک شہادت امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کی نہیں منایا، اہل بیت نے اپنے شہدا کا غم منایا کہ نہیں منایا، ان کا ماتم کیا یا نہیں کیا، کربلا میں بھی ذکر ہوا کہ نہیں ہوا، کربلا کے بعد ذکر ہوا کہ وہ غم اپنی جگہ، لیکن جو سالار شہیدہ کا اعزاز مل گیا ہوں ان کو، تو کیوں اسی وجہ سے نا، تو بے شک غم اپنی جگہ، لیکن پروردگار عالم یہ تاج ہر ایک سر پہ تھوڑی پہنا تھا، لیکن موت تو آنی ہے نا، کوئی ایسا شخص ہے جسے موت نہ ہے، ہم میں آپ کو کوئی ہے ایسا نہیں، موت آنی ہے، کیوں تمنا کرتے تھے خدا کے رسول کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو، بظاہر آپ کو اس انداز میں میدانی کرنے میں شہادت نہیں ملی نا، ٹھیک ہے، ظاہر قرآن کے سبب سے کہہ دیا گیا تھا خیبر میں، اس کے بعد آپ اس کے نتیجے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ تو اپنی جگہ ایک بات، لیکن میدانی جنگ میں شہید ہونے کا شوق تھا، پیغمبر مجھے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، اپنے لہو میں سرخ ہو جاؤں، اسی طرح مولا عارفان، مولا مستقیان، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آپ نے اہد پر کتنے مقامات پر کی خواہش کا اظہار کیا تھا نا، کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے خون میں غلطہ کر دیا جاؤں، ایسا تھا نا، تو رسول کی خواہش تو یوں پوری ہوئی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، ان کی شہادتوں کی صورت میں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کی جنگ میری جنگ، ان کو جس سے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، تو یوں سمجھیے کہ جس نے انہیں زخم لگایا اس نے رسول کو زخم لگایا، تو وہ شہادتیں رسول کی اس طرح شوق شہادت پورا ہوا کہ نواسوں کی صورت میں کربلا میں اور مدائن میں مدینے میں وہ شہادتیں سامنے آئیں، اس طرح سے سامنے بولا مولا کائنات کا شوق، یعنی جو شوق شہادت، شوق سے مراد شوق شہادت، آرزو کہ شہادت کی موت ملے، ایسی موت نہ ملے مجھے، شہادت کی تمنا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو بس یہ تمنا ہر ایک کی ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن کیا چاہتا ہے انسان کہ میری موت ایسی ہو کہ جو یادگار بن جائے، زندگی میں یاد کرنا، منصب پہ یاد کرنا اور بات ہے، مرنے کے بعد یاد کرنا، تو بس اسی طرح ہمارے شبو بھائی، مرنا تو تھا، موت آنی تھی، آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، لیکن ویسی موت آتی تو وہ خاندان والے، محلے والے، اجزا اقربا جن کے ساتھ کام کرتے تھے وہ آتے، آپ کو کیا معلوم ہوتا، آپ کو کیا معلوم تھا، لیکن دنیا بھر میں شہداء کی مجلسوں کا تسلسل بتا رہا ہے کہ عام موت جو ہے طبیعی موت وہ الگ ہے، شہادت کی معراج الگ ہے، شہید میراث بن جاتا ہے پوری قوم کی، پھر کسی کو نام معلوم ہو یا نہ معلوم، معلوم ہے کہ اس نے اپنی جو آخری متا دی، اپنا آخری اثاثہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں، مذہب کی راہ میں قربان کر دی، اپنی جان دے قربان کر دیا، لہٰذا وہ میراث بن جاتا ہے، اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے، تو زندگی کی یہی دلیل ہوگی نا، کہ بات چلتے پھرتے زندہ ہیں مگر مردوں سے بھی بدتر ہیں، میں تو زندہ مگر مولا کے بقول کہ مردہ لاشوں کی طرح، ایک مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اپنے پورے خاندان کو سرخرو کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کہلاتا ہے شہدا کا خاندان، پھر وہ کہلاتا ہے شہدا کا خاندان، لوگوں کے دلوں میں وہ ایک شہید اپنے پورے خاندان کا احترام ڈال کر چلا جاتا ہے، وہ عزت جو انسان برسوں میں کماتا ہے، شہید اپنے خون سے پہلا انعام تو یہ دیتا ہے اللہ کہ اس شہید کے خون کی برکت سے اس کا خاندان محترم ہو جاتا ہے، اس کے خاندان جو ہے اس کے اتحاد میں ہو اضافہ، غلط نہیں جگہ تو خود نہیں جگہ، لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ، ہم سب بناتے کون نہیں بناتا، رہا ابھی جن کو پھانسی دے دی گئی عبد القرو کو بھائی مجاہد کام کے لیے تو مجاہد ہے نا، کشمیر کے غم بنا رہے کہ نہیں بنا رہے، اس کے لیے ہڑتال کر رہے کہ نہیں کرے، تو انسانی فطرت ہے، جس کے بھی مارے جاتے ہیں غم تو بنائے گا، لاکھ لوگ کہیں گے غم بنانا ٹھیک نہیں، غم بنانا ٹھیک نہیں، جب مولوی علماء کا مستقبل ہوگا تو سب غم بناتے نہیں بناتے، پوری دنیا میں دیکھا لوگوں نے ٹی وی پر، رو رہے نہیں، رو رہے پیٹ رہے، سب نہیں پیٹ رہے، سب کا تو فطرت ہے، بس بات یہ کہ ہم میں اور دوسری قوموں میں فرق یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی اعزاز کرے غم بنانے کے لیے، جب اس پر اپنی اوپر پڑتی ہے تو روتا ہے، اپنے گھر میں جب وہ مصیبت آ جائے تو روتا ہے، ہم نے اپنے فرق یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو بھی حسین کے غم میں مدغم کر دیتے ہیں، ہم اپنے غم کو بھی حسین کے غم میں مدغم کر دیتے ہیں،
उसमें बुला मिला लेते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि कितनी ही बड़ी मुसीबत आए, कितनी बड़ी मुसीबत नहीं है, जितनी बड़ी शर्मा दे रिसालत करा, रास्ता दिखा कर गए, गड़बड़ा एक रास्ता दिखा कर गई। 1400 साल हो गए और अभी तक ये तसलसल जो है ये किस बात की बर्बादी कर रहा है? ये शहादतों का तसलसल गवाही देता है, शहादतों का तसलसल गवाही देता है कि बेवफाई नहीं है हमारी फितरत में। ये हमारा एहसास हुआ ना, ये हमारा इफ्तिखार हुआ। कभी कभी लोग परेशान हो जाते, घबरा जाते, कब तक होगा, कब तक चलेगा ये सिलसिला? अरे भाई रुका कब था जो चलेगा? 1400 साल में ये सिलसिला रुका कर, यही तो हमारी सरबुलंदी और सुरखरुई की दलील है ना, है दलील। लेकिन जब गैरी मदद आती है तो आपने देखा कैसा होता है कौमों के साथ, जब गैरी ताईद आती है तो क्या होता है? जो इस जान के इम्तिहान में सारी तरफ रहता है, याद रखिए अल्लाह का वादा है कुरान में, वलिल्लाह इज्जत व रसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। अभी क्वेटा में कितना बड़ा सानिहा हुआ, 100 से ज्यादा शहीद, सियासी को जनाजे रखे थे ना वहां, 100 से ज्यादा शहीद और सैकड़ों शहीद हुए साल भर में, हुए कि नहीं हुए, सब कुछ हुआ, कितना मोरल डाउन होने लगा था लोगों का। लेकिन जब गैबी ताई आई तो क्या हुआ? उन्हीं 86 का खून आपको पथा बंद करके चला गया, पूरी दुनिया मेरी मानी है ना, मन पूरी दुनिया में जिस तरह का आपने अपने शुहदा के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया और जिस तरह सड़कों पर निकल कर आए, पूरे पाकिस्तान में पूरे में तरीके से 4 दिन बैठे, पूरी दुनिया आपके फेवर में चिल्ला उठी कि नहीं? और फिर ऐसे ये धरने धनिया नहीं हुई क्या के बैठे और चले गए, कुछ हुआ या नहीं हुआ, फोटो सेशन कराया फिर चले गए, वो नतीजा निकला नहीं, नतीजा नहीं तो उठे ना, नतीजा नहीं तो जिस बात पर बैठे थे वो बात बनवाई, ये किसका काम था? ये उस शहादा के खून की तासीर थी। बेशक ताल देने वाला कोई होता है, कोई बुलाने वाला हो, कोई आवाज देने वाला हो, तभी तो आएंगे, ये गलत फहमी भी दूर करिए। तो अल्लाह ने एक वसीला पैदा किया था, कुछ लोगों ने स्टेप लिया, कुछ लोगों ने कदम बढ़ाया, कदम उठाया, ऊपर शहादा के खून की तासीर साफ थी। पूरा पाकिस्तान आपने लाहौर में भी देखा, जो ये कहते थे कि लाहौरी नहीं निकलते, उस लाहौर ने कितना सुरखुरु किया पाकिस्तान में, बेहतरीन अंदाज में लोग निकले, कौन कौन से लोग निकले, कैसे कैसे लोग निकले, जो माजरत के साथ के 10 दिन के बाद वो मजलिसों में भी नहीं नजर आते, मगर अपने बीवी बच्चों के साथ वहां बैठे थे। क्यों? ये शहादा का खून पुकार पुकार कर कह रहा था कि हम जिंदा है, हम इन करोड़ों लोगों की सूरत में जिंदा है, जो पूरी दुनिया में बैठे हैं धरना देखे, सर्दी में यूरोप में, अमरीका में, हिंदुस्तान में, सब जगह धरना हो रहा था। क्यों हो रहा था? ये शहादा का खून था। मगर वो कब असर दिखाता है? जब आप स्टेट में, जब आप रोड स्टेट में, जब आप घर से निकले, जब कोई पुकारने वाला तो हो, आवाज देने वाला तो हो, जब आवाज देने वाला होगा तो सारी तादाद हाजिर होगी। अब जनाब ये भी कहा जा रहा है तो फायदा क्या हुआ? वो तो फिर दोबारा आ जाएंगे, वो तो वायदा खत्म हो जाएगा। खुदा के बंदो, इतनी तारीख में आपके सामने पढ़ता हूं, इतना तो सामने आपके पेशे नजर होना चाहिए, मुझे ये बताइए कि सुलह हसन का क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? एक दिन भी अगर वो सुलह नहीं होना, फाड़ दिया ना उसने सुलह आने को, फाड़ दे, क्या ईमान को नहीं मालूम था कि ये होगा? मालूम था ना कि वायदे की पाबंदी नहीं करेगा, इसको फाड़ देगा, लेकिन ईमान ये चाहते थे कि अमल करेगा करे, तारीख में कयामत तक के लिए सुलह हसन महफूज हो जाए, कि शर्तें मैंने रखी थी, शर्तें उन्होंने नहीं रखी थी। शर्तें किसने रखी थी? गुलाम हसन ने रखी थी। तो मान लिया रिकॉर्ड में आने की नहीं आने की शिकायत रिकॉर्ड, तो बात यही है कि 60 दिन की जगह 30 दिन रह जाए, 15 दिन रह जाए, ना हुआ बस, मगर पूरी दुनिया में देख तो लिया ना कि जिस बात पर बैठे तो उससे पहले हटे नहीं, मनवाए बगैर। अब वो मुआहदे के अमल होना तो बात की बात, अभी तक तो हो रहा है, आज तक तो हो रहा है, टूट भी जाए, लेकिन बात यह कि उठे नहीं जब तक हमारे लोगों ने, हमारी माओ ने जिनके बच्चों की लाशें थी वो उठने को तैयार नहीं। और कैसे कैसे खयानतकार वहां पर है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो मैंने हर किस्म की गद्दारी करने की कोशिश की और कर रहे हैं, खयानतें करने की कोशिश की, हर जगह ऐसे एलिमेंट होते हैं ना कि जो फतह को भी शिकस्त का लिबादा ओढ़ाना चाहते हैं, या उसको क्या करेंगे, डायवर्ट किया जाए या उस तवज्जो हटाई जाए। ये हमारे यहां सब कुछ होता है, आप उसे बेहतर जानते हैं कि किसी तरह कौम को जो इज्जत हो मिला है बरकार मिला है, उसको डैमेज किया जाए, मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, मनफी बातों को फैलाया जाए, होता है कि नहीं होता? हर जगह होता है। लेकिन जब ये तय कर गए मशीहत के किसी कौम के हालात बदलने हैं तो फिर वो हालात बदल कर रहते हैं। बस और ये बात हम आपसे कह रहे हैं, आप देखते जाइए कि कितनी जल्दी और तेजी से अब हालात बदलेंगे और ये भेड़िए बुखार भेड़िए आपस में एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं शुरू हो गया, क्योंकि नजरियाती बुनियादी नहीं है। और फिर इस खून शोहदा का इस सुबह का एक फायदा और भी तो हुआ ना, वो जो पसे पर्दा फनकार थे मेरी बेनकाब हो गई कि नहीं हो गई, जो मूल फसाद थे जो मूल हवाइश थे जो सरपरस्त थे वो खुल के सामने आ गए कि नहीं आ गए। तो इस मायदे का कितना बड़ा एक फायदा यह हुआ कि जो दुश्मन के पीछे छुप कर बड़ा दुश्मन बैठा था खुलकर बिलबिला कर बेकार होकर तड़प कर खुलकर सामने आया कि नहीं आया, नकाबदार के सामने आया कि नहीं आया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि दहशत गर्दों का असल सरपरस्त है। पता चला कि नहीं पता चला? तो ये होता है खून शुहदा का असर, ये होता है शुहदा के खून की तासीर। कौमों की जिंदगी के इम्तिहानात बारहा मैंने आपकी खिदमत कर्ज किया कि चंद महीनों चंद सालों के थोड़े होते, ये तो सदियों का मुश्तमिल होते हैं सदियों तक। और हम तो मुसलसल 1400 साल से हैं ही इम्तिहान के आलम, बस कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा, किसी जमाने में कम किसी जमाने में ज्यादा, लेकिन बताइए साबित कदम रहे कि नहीं रहे। चैलेंज किया गया था कि इनको आइसोलेट कर देंगे, इनको ऐसे तनहा कर देंगे, कोई इनसे मिलेगा भी नहीं। आपने देखा कि उल्टा हो गया, पूरी दुनिया हमारे साथ हो गई, मकातिल हमारे साथ हुए, आपके धर्मों में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे जुलूसों में बैठे, जुलूसों में शरीक हुए, पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये मजलूम है, अकेला कौन हुआ, कोई इसका नाम नहीं लेता कि कहते ये हमने से है या हम इसके साथ ही, सबको पता चल गया कि दहशतगर्द कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन। ये शोहदा के खून का असर जाया नहीं जाता, दे या बदल। जनाबे याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, उन्होंने 500 साल बाद नतीजा निकला, निकला नतीजा कितने साल बाद निकला, उन्होंने 500 साल बाद 473 साल के बाद मक्त नसर ने हमला किया, तारात से मैं पढ़ चुका अय्या में अल्लाह ने आपके सामने पूरी तारीख उस दौर की, वो उस पर हमला किया, उन्होंने 500 साल के बाद असर दिखाया। तो खून हुसैन उभर रहा है ना, जोशमान रहा है ना, हर आशूर में वो सुर्ख होकर बताता है कि अभी इंतकाम पूरा नहीं हुआ। तो कितने साल हुए कर्बला के वाकये को, 1350-1400 साल तो हो गए ना, 61 हिजरी और ये 1435 अब शुरू हो गई, 1434 हिजरी शुरू हो गई कि नहीं शुरू हो गई, तो बताइए पौने 1400 साल हो गई कि नहीं हो गई, पौने 1400 साल से सुर्ख हो रहा है, ये ऐलान कर रहा है कि वो जुज़ी इंतकाम था जो जनाबे मेरे मुख्तार ने लिया था, फिक्र बाकी है, जब फिक्र हो फिक्र लड़ रही ना आपसे आगे लड़ रही है, तो खून सुर्ख होकर ऐलान कर रहा है, जोशमार के ऐलान कर रहा है, तो उस वक्त तक ये खून जोश मारता रहेगा जब तक फिक्र यजीदी को खत्म न कर दो। और यकीन रखिए बात हम हो या ना हो इसीलिए खून उबलता है, इसीलिए खून जोश मारता, क्योंकि आल मोहम्मद अजल्लाह तआला का जोश शरीफ माजी में जो कुछ होता रहा 65 साल का किया था, जो स्कूल की साख है जिस साख पे चल रहा है जिस हिसाब से चलाया जा रहा है उसके साथ हर कौम पर आए, उसके साथ हमारे अंदर भी आए, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी जमाने में सरेंडर थोड़ी किया हो सकिए, किसी भी जमाने में हुसैनियत झूठी थोड़ी हुई है जिंदियत के सामने, हमारा पैगाम हक है, हमारा पैगाम सच है। याद है शोहदा का खून क्या करता है, इस पैगाम को आम करता है। अब इस शहीद के जनाजे से जो लोग जाते हैं टुकड़ाए के भी बाहर था जनाजे में नहीं, तो लेकिन बाहर में तो पहुंचा कि मुझे जो सारी तफसीलात बताई गई कि किस किस तरह से कहां कहां के लोग आ रहे थे बगैर मजहब की तबलीग से, और रोते हुए भी आ रहे थे, कुछ मातम करते भी आ रहे थे, कुछ वाकयात बता रहे थे, यानी वो जिंदा हो गया, जो कारनामे उसके छुपे हुए थे वो शहीद होने के बाद सामने आ गया, वो शहीद होने के बाद उसके सामने आ गया। जाहिर के कैसी माँ कि जिसने चंद माह के अंदर अंदर इतने सदमे देखे हो, या इनके हमशिरा शहीद के हमशिरा का कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ, शहीद के खाला का कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ, और फिर उस घर में इतने सदमे देखने वाली माँ, लेकिन अल्लाह ने उसे इस काबिल पाया ना, उस आबिदा जाहिदा को जिसके तमाम बच्चे, इतनी मैंने कहा कि मैं पूरा खानदान को जानता हूं कि पूरा खानदान हुसैनियत के रंग में रंगा हुआ, सांचे में ढला हुआ, कौम के लिए हमेशा सारे उनका जान माल हर चीज हाजिर, जिंदानों में भी उनकी औलादें हमारे साथ रही, और मुजम्मिल भाई खुदा उनको सेहत और सलामती दे, सुरभाई के जो बड़े भाई उनकी सूरत में बरसों हम लोग साथ काम करें, अब भी वो कहीं हम पे काम हो रहा है। तो ऐसा फर्ज ये अल्लाह ने एजाज दिया इस खानदान को, मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी जो खिदमत है इस खानदान की, इससे बड़ा इनाम कोई हो ही नहीं सकता था कि परवरदिगार आलम ने इनके सर पर शहादत का ताज ले लिया। दम अपनी जगह सो अपनी जगह में उसका इंतजार नहीं हो, उसका इंतजार नहीं कर रहा। अगर जैनब अपने भाई को ना रही होती तो मैं कहता भाई क्यों रो रहे हो, अगर जनाब लहरा ने अपने बच्चों का मातम ना किया होता ना रही होगी तो मैं कहता भाई तुम क्यों रो रहे हो, भाइयों को भी मैं मना करता भाई क्यों रो रहे हो, शहीद हुआ लेकिन नहीं, हमने तो करबला में देखा ना कि गम मनाना सुन्नत है, क्यों? ये क्रिया ही जो है जो इंसान के दिल को नर्म करता है और अहले बैत की मोहब्बत को उसमें बढ़ाता चला जाता है। जिन दिलों में ये क्रिया नहीं, जिन आंखों में आंसू नहीं, जिन दिलों में रिक्कत नहीं, वो देखी शक्ल मर्म है, वो दहशत गर्द यार, क्योंकि वहां क्रिया नहीं ना, रिक्कत कल तो है, रिक्कत कलवी उनके पास है ही नहीं, जब रहेंगे तो शक्ल बिल्कुल इंसानी जान के लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है। आप उन इंसान से बताइए कि कभी दुश्मन पर गालिब आने के बाद कोई अहले बैत का चाहने वाला ये सुलूक कर सकता है, लाशों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, औरतों की बेहरमती कर सकता है, बच्चियों को गोलियां मार सकता है, बच्चों के टुकड़े कर सकता है, नहीं ना, यही एक फर्क है। आप कितना ही बड़े वो बहादुर है, दुश्मन पर गालिब आने के बाद कभी ये गैर इंसानी सुलूक नहीं करेंगे, क्यों? रसूल ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, हसन हुसैन ने नहीं किया, इमाम कायदी ने नहीं किया, बल्कि दुश्मनों के साथ भी हमला शुरू। तो ये फर्क कायम, ये जो क्रिया है ना क्रिया, ये रकीबुल कल्ब बनाता है, ये इंसान की दोस्ती पैदा करता है, बहादुर बनाता है, तो दुश्मन से मैदान में मुकाबला होता है, दुश्मन से सामने मुकाबला होता है, बाल बच्चों के साथ उसके बाल बच्चों की हिफाजत भी खुदा के रसूल करते हैं, उसके बाल बच्चों की हिफाजत भी इमाम जैनुल आबिदीन एहसास करते हैं। मरवान से बड़ा दुश्मन कोई नहीं था उस जमाने, ये वो मलून है, इसको इसके बाप समेत रसूल ने निकाल दिया था कि मदीने में इसका दाखला बंद था, पहले दो अदवार में नहीं आ सकता था, बाद में वापस आया, तो जितनी भी साजिशें तैयार हुई कुछ करबला तक की उसमें भी इसका हाथ था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत में भी इसका, मरवान बिन हकम का बहुत बड़ा हाथ था, और उम्मुल मोमिनीन की शहादत में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, जो लोगों को बताया नहीं जाता, जब हम पूछते हैं अच्छा भाई ये तो बता दो कि उनका कातिल कौन, उस पर लानत भेजे के ना भेजे, में चुप हो जाते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन के कातिल को भी तो हम तो लानत भेजते हैं भाई, और फिर आप हमें कहते हैं उनको बुरा भला कहें, हम क्या बुरा भला कहें, हम तो कहें उनके कातिल जो भी है, हमें क्या बदल, जो भी है उस पर लानत हो, उम्मुल मोमिनीन को तो ये इतना बड़ा खबीस था। और जब मदीने में बगावत हुई किनारे अब्दुल्लाह इब्ने हंजला रसूल में मलाइका की सरबराही में यजीद के खिलाफ, तो सबसे पहले जो हुक्म आता कि इसको मारो, मरवान को कत्ल करो, ये नुमाइंदा था ना उनका, अभी इसकी सबसे बड़ा बुजुर्ग यही था मदीने वालों की नजर निगाह, तो इसको कोई पना देने वाला नहीं था, सब दरवाजे बंद थे, ये अपनी बीवियों अपनी बेटियों अपने बच्चों अपने नवासियों अपनी पोतियों के साथ सीधा भागा इमाम सज्जाद से। अब तो मदीने के अंदर उसको तो मदीने से जरा सा बाहर का इमाम अपने बाहर भी चले गए थे ना, ये हुई बगावत हुई यजीद के खिलाफ मदीने में, वाकई हुआ जिसको कहा जाता है तारीख, चला गया और वहां जाके पढ़ा कर रखी। अब बताइए पूरा वाकई करवाला निगाह में है कि नहीं, खिलाफ जनवादी असलाम की शहादत इमाम हसन निगाह में है कि नहीं, इसकी मक्कारियां इसकी अयारियां इसकी साजिशें निगाह में है कि नहीं है, लेकिन बीवी बच्चों को लेकर बेटियों को लेकर नवासियों पोतियों को लेकर आए, इमाम ने दरवाजे खोल दिए, और उसके बाद मदीने वालों की हिम्मत नहीं थी कि चौथी इमाम के घर पर लगे, मदीने वाले चिल्लाते रहे कि आप इसको बाहर निकाल दीजिए, कहने जिसने मेरे घर में पनाह ले, अब वो याद दिला रहे कि इसने क्या क्या जुल्म किया है आप पर, तो कुछ भी किया मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, मेरी पनाह दो। तो आप यही तालीमात आपके पास है कि नहीं, आप कर सकते हैं, हम कभी भी अपने दुश्मन के साथ ये सुलूक नहीं कर सकते, यही फर्क है तारीख में हमारे उनके दरमियान, कि हजारों लाशें उठाने के बाद भी हम इंसानियत के दामन को हाथ से नहीं जाने देते, क्योंकि हमारे शहीद जिंदा, दुख अपनी जगह गम अपनी जगह, उनकी हालात में बताए जो कुछ हो रहा है, ये एक दूसरे को भी मार रहे हैं, एक दूसरे को भी गोलियों से उड़ा रही है, एक दूसरे की मस्जिदों मदरसों को भी उड़ा रही है, क्योंकि इनकी नजर में हम तो पहले कहते थे अभी हम पे हमला हो रहा है, अभी हमें मारा जा रहा है, तुम सब खा पाओ, एक दिन ये सब घड़िए तुम पर भी टूट पड़ेंगे। ये तो खवारिज है ना, खवारिज का काम यही है। अब खवारिज जैसे जिससे इख्तलाफ होता है वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को उड़ाते हैं गोलियों से, क्योंकि वो तो खवारिज है, उनके दिल में कोई अपने सिवा कोई भी मुसलमान किसी को मुसलमान नहीं मानते, मगर हमारी तालीमात का ये हिस्सा नहीं, हमने नहीं सीखा। ये सब जाहिर है कि अभी बिल्कुल ताजा है, अभी तो शहीद का चेहरू भी नहीं हुआ, 24 फरवरी को होना है कराची में चेहरू, एक साल हो जाएगा, दो साल हो जाएगा, माँ के दिल पर जो दाग लग गया उसे कोई मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा कि माँ के दिल का गम जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक हद तक सब आ जाएगा, जिंदगी में एक खास ठहराव आ जाएगा, ये दाग तो हमेशा रहेगा, ये गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन वो कैफियत जो पहले दिन वाली थी, तीसरे दिन वाली थी, शुरू के हफ्ते वाली थी, एक महीने चेहरों तक थी, वो कैफियत में बिलाखिर एक ठहराव आएगा, नवासे नवासिया पोते पोतियों नहाने, बिलाखिर तवज्जो थोड़ी सी बढ़ेगी ना, दाग अपनी जगह रहेगा, वो गम अपनी जगह रहेगा आखिर वक्त तक, लेकिन एक ठहराव आ जाएगा। मगर जब अय्याम आएंगे, वही माँ वही बहने वही भाई वही उनके बच्चे अपने बाप का अपने भाई का अपने बेटे का गम उठा के जहरा के लाल का गम मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? जहरा के लाल का गम मनाएंगे ना, क्यों? जानते हैं कि हमारी मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, उस मुसीबत से बड़ी नहीं जो फातिमा जहरा के घर पे आई। इसलिए मजलिस की बात, इसलिए इस सारे सवाल की बात, ताकि हुसैन के गम अपने गम को मदगम कर दिया जाए, कुछ तसल्ली हो जाए, खारस हो जाए। तो जब वो जख्मों से चूर होकर गिरा, फौरन अहले मोहल्ला पहले जो बाहर खड़े थे वो आ गए, भाई आ गए, दौड़ दौड़ के सब आ गए, पूरा इलाका जमा हो गया, खून बह रहा था, लेकिन संभालने वाले थे ना, संभालने वाले थे। अब मुझे बताइए कि मैं किसके मसाइब पढ़ूं, कि माँ की भी तसल्ली हो, बहनों की भी तसल्ली हो, भाइयों की भी तसल्ली हो, औलाद की भी तसल्ली हो, उस शहीद मुजाहिद की बेवा की भी तसल्ली हो, तो बस मुझे एक ही हस्ती नजर आती है और वह है हुसैन। हुसैन नजर आती तो वहां जख्मों पर जख्म पड़ रहे थे, यहां संभालने वाले कितने आगे मुझे बताइए, बहनों को भी संभालने वाले थे, नहीं थे? पूरी मोहल्ले की खवातीन जमा हो गई, माँ को भी संभाल दी, बीवी को भी संभाल दी, बच्चों को संभालने वाले भी बुजुर्ग मौजूद, बहनों को संभाल दी, मोहल्ले की खवातीन सबको संभाल दे ना, लेकिन जैनब दौड़ रही थी। वो दिल जैनबिया जो आपने सुना है ना, अजीब है करबला, अजब है ये करबला। रिवाज से हट के मसाइल पढ़ने की कोशिश करूंगा। जैनब दौड़ गई, कभी मैदान में और कभी किले पर जाती थी, देखने की कोशिश करती थी सानिया जैनब मेरा भाई है कहां, और चिल्ला चिल्ला कर कहती थी लोगों कुछ तो बताओ मेरा भाई किस तरह मिला। किसी बहन पर ये मुसीबत आई नहीं दुनिया, और जनाब सिद्दीक शुहदा जब जना से नीचे तशरीफ लाए थे तो उनकी भी कैफियत थी। हुसैन ने देख लिया था अपनी बहन, ठीक है, नहीं चाहते थे कि मुझे इस हाल में मेरी बहन को, तो हुसैन ने उसी आदर में करवटे लेकर एक निश्चित में अपने आप को, हमें एक बड़ा कबीर सा लफ्ज मुझे लगता है इधर से, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ मिल नहीं रहा, करवटे लेकर हुसैन ने एक निश्चित में अपने आप को लुटाने शुरू किया, ताकि कहीं मेरी बहन इस हालत में मुझे देख ना, देखा ना जाएगा मेरी बहन। तो ऐसी मोहब्बत किसी भाई बहन में है? दो हस्तियां मैं कभी अर्ज कर चुका हूं अल्लाह फातिमा की मजलिस में, कि बेटी के लिए बाप खड़े होते थे रसूल, बस, और कोई अपनी बेटी के लिए दुनिया में सुन्नत रसूल के खड़ा हो, अली भी अपनी बेटी के लिए खड़े नहीं होते, या फातिमा के लिए रसूल खड़े होते थे या जैनब के लिए हो जाए, क्यों क्यों अदा डालो, क्या फर्क है, क्या मुमासलत है, क्या बराबरी है? फातिमा के लिए इसलिए खड़े होते थे कि फातिमा दुनिया रिसालत है, तो मिलनी मेरा टुकड़ा है रिसालत का इंतजार के बगैर रिसालत मुकम्मल नहीं। यादव बेटी का एहतराम नहीं था, उस जिस में रिसालत का एहतराम था। हुसैन भी जानते थे कि जैनब शरीफ हुसैन है, जैनब के बगैर करबला मुकम्मल नहीं। यादव एहतराम सुन बहन की हैसियत से नहीं, एहतराम इस हैसियत से है कि बात है कूफ और शाम है मेरी बहन जैनब, शरीफतुल हुसैन है जैनब। करबला की शेर की खातमा, हालांकि ये कोई लकब नहीं बन सकता, कहा शहजादी की हिम्मत और कहा शेर ने कहना, लेकिन वहां अब यही लफ्ज मिलते हैं। इसके अलावा कोई अल्फाज मिल नहीं सकते कि आपके मकाम को बयान किया जा सके। इसलिए जैनब तो जैनब कि जिसने अब्द के वक्त ये शर्त रखवाई थी कि मेरा भाई जहां जहां जाएगा मैं साथ साथ जाऊंगा, बल्कि मौला कायनात ने बाद रिवायात ये शर्त रखी है। अली की बेटी के मां से जो मारूफ किताब है उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें अर्ज के मौके पर ये लिखा हो कि जहां जहां हुसैन है ये मोहब्बत है बहन और भाई की, इस अंदाज में चले और कुर्बानी का सामान लेकर चलिए अपने साथ, अपने बच्चों को साथ लेकर चलिए कि अपने भाई पर कुर्बान कर। देखिए यहाँ अचानक सानिहा होता है ना, खबर आती है कि मेरा अजीज शहीद हो गया। उस जैनब तो जब मदीने से चलिए तो जानती है कि मैं किस सफर में जा रहा हूं, मगर उसके बावजूद एक उम्मीद है जैनब को कि मेरे इतने सारे भाइयां पूरा बाज से आए, किसी की हिम्मत है कि मेरे सर से चादर उतार दे। यही तो फर्क है ना आजादारों कि हमारा बहुत करीबी अजीब हमसे पिछड़ गया ना, हमारा दोस्त चला गया, एक इबादत गुजार, एक गरीबों की मदद करने वाला, एक दूसरों के काम आने वाला शख्स हमसे चला गया, बहुत मालूम है। लेकिन अजीजों वो कुछ नहीं हुआ जो करबला में आले रसूल के साथ। आज भी आप देखिए ना कितनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह, वो शहर नहीं होगा मगर इतनी बड़ी तादाद में पुरसा देने के लिए, ऐलान करने के लिए कि हम आपके गम में बराबर के शरीक है कि नहीं, लोग जमा हो गए ऐलान करने के लिए हम इस गम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन वहां बताइए कि जिंदार में कितने अरसे रहे मुझे नहीं मालूम, मुख्तलिफ रिवायात में, मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन चहलुम नहीं हुआ। अरबईन होना उस वक्त की सुन्नत थी, अरबों में अरबईन होता था, अरबईन नहीं हुआ। जैनब अपने भाई का गम नहीं मना सकता, उस मां को मैं कैसे तसल्ली दूं, सिवाय इसके मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि हर मां के लिए उसका बेटा हसीन और जमील होता है, और फिर इस मां का बेटा तो वैसे भी हसीन और जमील था, मगर कुछ भी था ऐसा नहीं था जैसा फातिमा के लिए हुसैन है ना। रिवायात मिलता है और तवातुर के साथ मिलता है कि इधर हुसैन ने मकातिल की रिवायत, क्योंकि जहां हुसैन ने मदीना छोड़ा मां ने मजार छोड़ दिया। कितनी रिवायतें ऐसी हैं, इसलिए सबको जमा करके पढ़ता हूं कि अगर एक हो तो कह दिया जाएगा कि नहीं है एक फर्दी। कितनी रिवायतें, एक उस वक्त की जब तजहीद और तकफीर कर चुके मौला दुख्तर रसूल की, और तजहीद और तकफीर के बाद बच्चों से कहा मां से रुख्सत हो, चारों बच्चे हुजरे में आए, तीन बच्चे दौड़ के जनाजे पर गिर पड़े मगर हुसैन नहीं। जैनब उम्मे कुलसूम हसन शहजादे हसन सब जनाजे पर, पूछो मौला ने बेटा हुसैन रुख्सत नहीं हो रहा। अजीब जुमला फरमाते हैं थे कि शहदा जब तक मेरी मां बुलाएगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। ये हुसैन का मान है ना, हुसैन का मान है, हुसैन तो की मोहब्बत पर नाज है। और यही नकल करती है रिवायत, इधर हुसैन ने ये जुमला कहा उधर भंडे कफन टूट गए, आगे फैलाली माने मेरे लाल आ जा। मैं दर्ज किया था कि एक रिवायत हो तो इंसान कहता है कह सकता है तो भाई ऐसे ही होगी, मगर एक नहीं है, इस बात में कई रिवायत, कई रिवायत है कि माँ ने हुसैन ने मदीना छोड़ा, माँ ने मजाक छोड़ दिया, जहां जहां ये काफिला जाता था पीछे पीछे मां जाती थी। शबे आशूर मिलती है अजगरों को, मुझे सबको तसल्ली देनी है ना, बहनों को भाइयों को बेवा को और उस ज़ईफ माँ को, ज़ईफा माँ को पिछले चंद महीने में कई सदमे देख लिए हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, यकीनन ये इतनी दिलेर खातून है कि अल्लाह ने इतने बड़े बड़े इम्तिहानात के लिए इसका इंतखाब किया, इस ज़ईफी में मैं भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे खानदान को कैसा इबादत गुजार है, कैसा दीन का खिदमत करने वाला ये खानदान है। तो वो शबे आशूर क्या हुआ, सारी लहरा ने बुलाया माधाए को, माधाए पुष्ट खेमा से जब से सूरज गुरूब हुआ किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। कोई बीबी ऐसे होती है जैसे उसका जवान जुबा कर दिया। हुसैन के गले में बाहें डालकर कहा पहचाना नहीं रहे, ये कोई और नहीं हमारी मां जहरा, हमारी मां जहरा, हमने मदीना छोड़ा है, मां ने मजार छोड़ी। अगर आओ मैं इस रिवायत पर जानती की यकीन करता हूं, आप पता नहीं क्या समझेंगे मेरी बात को, लेकिन यकीन कर मुझे इसलिए यकीन आया कि मैंने हुसैन के गम में जिन्नात का गुड़िया सुना। बहुत परवरदिगार मुझे माफ कर देना, ये बातें करने की नहीं होती, बखुदा कसम खा के कह रहा हूं कि इससे मुराद मेरी ये नहीं है कि मैं कोई खुदा ना करे कोई आपसे लोगों के सामने कोई इज्जत का तालिब हो या लोगों के सामने अपने आप को कोई नुमाया करना चाहता हूं। मैं कसम खा के आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी मुराद नहीं है, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं उस रिवायत की तारीफ में अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि मुझे बताइए। और ये अगर आप छोड़ दीजिए मेरे तजुर्बे को, सबसे बड़ा मुखालिफ है सीयूटी जलालुद्दीन अबू बकर सीयूटी, जिसने एक सफे में कर्बला लिखा है वाकई तो बोला, उसने इस बात को तस्लीम किया कि हुसैन के गम में जिन्नात हो रहे। जिन्नात नजर आते नजर नहीं आते, मुझे बताइए आज तक जिस हुसैन के गम में जिन्नात रो रहे हो, मैं इस बात पर शक करूं कि बहरा के रोने की आवाज बेटी के बाद, मैं इस बात पर यकीन ना रखूं कि हुसैन और जैनब जैसी औलाद अपनी मां के रोने की आवाज न सुनिए। मैं फिर इस मिम्बर पर आपको अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे माफ करे, ये बातें मैंने इसलिए नहीं की, ये बात कि खुदा न करे मुझे कोई आपसे मकाम या लोगों के सामने कोई अपनी बड़ाई मकसूद है, मगर मैं आप और आप भी कभी, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो सिर्फ मुझे हुई हो किसी को ना हुई हो, आप कभी यकीन कर लेंगे मेरी बात का, आम आदमी को भी ये तजुर्बात होते हैं जब वो कहता है कि दरो दीवार से गिरिया की आवाज ना हो, ये दरो दीवार से गिरिया क्या है, जब खुलूस से आप बच्चे का बिछाते तो मखलूक आती है हुसैन का जिक्र सुनते हैं, जो मैंने उमूमी बना दिया, और इसको आप खुद से महदूद ना कीजिए ना समझिए, बल्कि आपको ये तजुर्बात हो जाएंगे और हुए होंगे, आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस बात में। तो आप मुझे बताएंगे जब हुसैन ये कह रहे हो कि जैनब ये कोई और नहीं हमारी माँ जहरा है, पति ना छोड़ा माँ ने मजा हुसैन को रोने, ये तो हुसैन का खून आज तक जोश मांग, इसमें कोई शक की गुंजाइश है, खाते शिवा के खून में शक की गुंजाइश है, कितनी बड़ी बड़ी निशानियां सामने हैं, अब्बास के लिए पानी हो रहा है आज तक अगर करेगा या नहीं, कबल अब्बास का तवाफ कर रहा है या नहीं, सर टकरा रहा है या नहीं, तो जब जमादात को अल्लाह ने ये चीज दे दी कि वो हुसैन के घर में अब्बास के घर में सर पटकते रहे, तो मुझे बताइए जहरा हुसैन की मां फातिमा सैयदे निसाए आलमीन खातून जन्नत खातून महशर जिसकी शिफात के बगैर किसी की बख्शिश नहीं हो सकता बल्कि भी, अब मुझे बताइए कि जैनब कहती किसी के रोने की आवाज आती है पुत्र फेमा से कोई बीवी हो जैसे उसका जवान जुड़ा कर दिया गया हो, तो जैन की आंखों में अश्क आ गए, अब बहुत पहचाना नहीं तो गौर में हमारी मां जहरा है, हमने मदीना छोड़ा बहुत मुसलमान छोड़ती है अपनी इस मां को तसल्ली देने के लिए, इस शहीद की मां को तसल्ली देने के लिए मैं ये जुमले अर्ज कर रहा हूं कि कितने लोग आ गए उठाने वाले, कितने इंतजाम से जनाजे को कब्र में उठाया गया, हजारों का मजमा था मुझे मालूम है, तुम्हें इलाके की कितनी महबूब शख्सियत है शब्द आया, हजारों का मजमा था उनके जनाजे में, लोगों ने किस तरह से तनावरात भी किए शिकार भी किए, तो उनकी महबूब शख्सियत था वो शख्स अपने इलाके में, इतने लोग आ गए थे ना, लेकिन यहाँ जहाँ हुसैन को कत्ल होना है वहां जानते हैं आप क्या हुआ था, जब आसूर जब हुसैन अंसार को लेकर गए कि आओ तुम्हें अपना अपना मकान शहादत दिखाओ, और जब अपना मकाम शहादत दिखाने की नौबत आई तो वह वापस चलो, जल्दी वापस चलो। होगा आप अपना मकाम शहादत दिखाने लगे तो वहां ऐसा क्या था? या आपने बात की क्या समझे? रोने लगा मेरा इमाम और बात क्या मैं तुम्हें वहां कैसे ले जाता है मेरी इमाम। हालांकि रिवायत तनखात बहुत सख्त है, मगर मैं नहीं पढ़ सकता। जगह तो साफ कर रही थी मेरी बात, जहां कल मैं कत्ल किया था। अब मुझे बताइए कहां कहां की रिवायत नकली करूं? सकीना बिछड़ गई थी तो किसने सहारा दिया? कौन थी वो बीबी जो पीछे पीछे नाकों को चली जा रही थी अपने बच्चों के साथ? मुस्लिम के बच्चे शहीद करके नहर में फेंक दिए गए, वो कौन बीबी थी जो मुस्लिम के बच्चों का नातम कर रही थी नहर कूफा के सागर पर? बस अगर आओ आज की जहमत में तमाम करना चाहता हूँ, बस उस देवा के लिए दो जुमले तीन जुमले करना चाहता हूँ कि शब्द लिखा आपके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की छाया था, बच्चों के सर पर छायाधान था, आपके सर का ताज था, आपकी मां का सिंदूर था, सब कुछ था। लेकिन जरा उम्र रुबाब के दिन से पूछो, उम्र लैला के दिन से पूछो, मांग भी उजड़ गई, गोद भी उजड़ गई, उन सब की। और इसीलिए उम्र रुबाब ने कसम खाई थी जब हाथ बंधे हुए थे और हुसैन का लाशा बेदो वतन देखा था, बेसर का लाशा को तवाफ कर भी निकला उम्र रुबाब लाश होकर, कोई उठाने वाला नहीं था लाश होकर, हुसैन के कदमों में सर रख कर बैठ गई, हाथ बंधे बल्कि कुछ सर रख दिया था और तौबा करती थी। यानी मां तौबा नहीं बल्कि मां भी मांगती थी जो वाली अपनी कनीज को माफ कर दे कि मेरे सर पर चादर भी नहीं कि तुम्हारे जनाजे पर डाल दे, मेरे जो हाथ भी खुले हुए नहीं कि कुछ हाथ उठा के तुम्हारे जनाजे पर डुबा दे। बस तुम प्यासे कब्र किए गए हो और जब तक जिंदा है उम्र रुबाब जिंदा पानी नहीं पी, तुम्हारा नाशा बेबोर कफन धूप में पड़ा है, जल्दी धूप में पड़ा है, कभी उम्र रुबाब फायर नहीं देखेगी। करबला की बीवियों के साथ क्या हुआ? इसी ये तो बस दो सत्य है करबला में, बस मैं तुझे तमाम करना चाहता हूं, या अली अकबर की रुख्सत है या हुसैन की। और हुसैन की रुख्सत तो कोई बयान कर ही नहीं सकता कि क्या बीवियों का आनंद था, कैसे रुख्सत करे हुसैन को, जानती है कि अब क्या होने वाला है इसके बाद। और हुसैन ने बड़े इत्मीनान से सबको अपनी बहन जैनब के हवाले किया। जैनब को रोने से रोका नहीं, उठाने का जितना रोना हो आगे रो, मेरे बाद तुम्हें रोने की मोहलत नहीं मिल रही है, ये सब तुम्हारे हवाले, बल्कि यूं कहोगे पूरा इस्लाम की कश्ती तुम्हारे हवाले हो गए। इसलिए जैनब का एहतराम तो हुसैन के बाद बहन की हैसियत से नहीं, क्योंकि करबला के बयाबान में जो वाकया हो गया इसे कयामत तक जिंदा रखने की जिम्मेदारी है सानिया ज़हरा की, इमामत को बचाने की जिम्मेदारी है सानिया ज़हरा की, अली के लहजे में खुतबात बयान करने की जिम्मेदारी है सानिया ज़हरा की। इस तरह निकले थे हुसैन खेमे से कि अजमा सिंह मंदिर कशी करते हैं वकाए निगाह, तो ये निकले कि ऐसे निकले जैसे भरे भर से जवान का लाशा निकल गया। और जब हुसैन खेमे से बाहर आए तो हसरत से कभी दाएं तरफ देखा कभी बाएं तरफ देखा, कोई बाग थामने वाला न था। हसरत से गंजे शहीदा का रुख करके कहा, मेरे शेरो मेरे सिरे से एक एक को सवार कराया, अपने मौला को सवार नहीं करो, हुसैन को सवार करवाने वाला कोई ना, जब तू क्या हो खेमे का पत्थर उठा मेहनत चार अक्सर के लिए कहा कि मेरे भाई हुसैन तुझे नैन सवार कराएगी। पहुंचे हुसैन आखिरी मार का ऊंट पर हुज्जत बना हुई, मेहरा के नाम ने पहला हमला किया, ये लश्कर कूबे की दीवारों से टकराने लगा, अलमान अल हदीस की आवाज है। दूसरा हमला किया हुसैन ने, हर हमले के बाद पलट कर कहते थे गंगे शहीदा का रुख करके, मेरे शेरो मैंने हर हर रात तुम्हें दाद दी थी, मैंने मरहबा कहा था, अब अपने मौला की जंग नहीं देखते हुए अब हुसैन की जंग देखो, तो बहुत कर राशियन फैल चुका,
अब
ये हमले करके बता दिया हुसैन की चलती तलवार से चाहू तो तुम्हें भेद कर सकता हूँ, बस हाथ में भेदी की निगाह गूंजी होगी, वही वक्त होगा जब आवाज गूंजी होगी आइए तो हम नफ्सुल मुतमइन्ना ऐसे ही मिला रब्बे राजियत मर्जिया एक मिनान पाने वाले नफ्स पलेगा अपने घर की मेज और किसी ने ऐसी नसीबी देखी जो कभी नहीं देखी किसी ने ऐसा माहौल देखा पहले में जो शहादत ही पेट के बाहर जैन में उनसे कुछ सोने देखा किसी ने ऐसा ऐसा माहौल देखा किसी किसी जाना नहीं है